पंचदशी ग्रंथ के।
तो देखो, तो यहाँ तो भी ज्ञान की बात होती है, प्रवचन में भी ज्ञान की बात होती है, लेकिन प्रक्रिया थोड़ी सी अलग है। तो कहते हैं ज्ञान कराना है ब्रह्मों का ज्ञान कराना है, तो कैसे ब्रह्म सामने खड़ा हो जाएगा? ऐसा तो होता नहीं यहाँ पर, है ना? क्योंकि ब्रह्म तो अपना स्वरूप ही है, ब्रह्म अपना स्वरूप ही है, इसलिए ब्रह्म का ज्ञान होगा आत्म रूप से। ब्रह्म मेरा स्वरूप है, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन अहम शब्द से हम किसको लेंगे? यदि अंतकरण विशिष्ट को लेते हैं तो इसका एकत्व नहीं होगा ब्रह्म के साथ, लेकिन शास्त्र तो कह रहा है कि दोनों में एकत्व है। तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, ये सब कहता है। इसलिए यहाँ पर निरूपण किया जा रहा है वाच्यार्थ क्या है, लक्ष्यार्थ क्या है, अहम शब्द का, त्वम शब्द का। तो वाच्यार्थ है अंतकरण विशिष्ट चेतन, जिसका नाम जीव है, है ना? और जितने भी गुण दोष है सब अंतकरण में रहते हैं, सब अंतकरण में रहते हैं। और अंतकरण में यदि मैं ऐसी बुद्धि हो गई तो आप जीव बन गए, आप जीव बन गए ना, और क्या है? अंतकरण में आम बुद्धि ना करने पर आप क्या हो? जीव थोड़ी है। अब करके देखो, ये शरीर में आम बुद्धि मत करो भाई, तो आप ना पति है, ना पत्नी है, ना मनुष्य है, ना पशु है, कुछ भी नहीं है, फिर भी आप रहेंगे ना, है ना? फिर भी आप रहेंगे, उसको कहते हैं लक्ष्यार्थ, है ना? ये लक्ष्यार्थ हो गया। इसलिए यहाँ पर कूटस्थ बोलते हैं। तो अहम शब्द का अर्थ कूटस्थ है, वो कूटस्थ चेतन विशिष्ट चेतन से भिन्न है, ये निरूपण हो रहा है। तो घट का ज्ञान होने से पहले घट का प्रकाश हो रहा था, घट का ज्ञान होने से पहले घट का भान होता था, किस रूप से होता था? अज्ञात रूप से। घट को तुम जानते हो तो बोलेंगे घट को मैं नहीं जानता हूं, हाँ? फिर भी आप जानने वाले हो कि नहीं? फिर भी आप जानने वाले ही रहेंगे, बड़ा कठिन काम है, हाँ? चाहे जागृत हो चाहे स्वप्न हो सुषुप्त, आप जानने वाले ही रहेंगे। और भगवान खड़े हो जाएंगे सामने शंख चक्र लेकर के, हाँ? तब भी आप कह रहेंगे, है ना? आप जानने वाले ही रहेंगे, है ना? तो कहते हैं ज्ञान मतलब घटाकार वृत्ति होने से पहले घट का ज्ञान हो रहा था है अज्ञात के रूप से, हो गया ना? हाँ। और घटाकार वृत्ति होने के बाद घट ज्ञात हो गया। अब प्रश्न ये उठ रहा था षष्ठ श्लोक में कि भाई एक ही घट पदार्थ में दो धर्म कैसे रहेंगे? अज्ञातता और ज्ञातता दो धर्म कैसे रहेंगे, हो गए कि नहीं? तो कहते हैं हो जाते हैं, हो जाते हैं, अनेक धर्म हो जाता है। जैसे व्यवहार में भी देखते हैं, कोई देवदत्त है और भोजनालय में गया और भोजन बना रहा है तो उसका नाम क्या हो गया? पाचक हो गया, है? तो एक धर्म आ गया पाचकत्व, हो गए कि नहीं? और जिस समय सब छोड़ दिया और पुस्तक पकड़ लिया तब भी आप पाचक हो गए, पाठक, हाँ, विद्यार्थी समझ लो, है ना? पाठक विद्यार्थी हो गया, दो धर्म आ गए कि नहीं आ गए? दो धर्म आ गए। ऐसा हो जाता है, है? कि क्यों? उसका उसकी उपाधि बदल गई ना, देवदत्ती की उपाधि बदल गई, एक पाचन क्रिया उपाधि और इधर पठन क्रिया उपाधि। तो उपाधि बदलने से धर्म बदल जाता है ना? इसलिए उपाधि जैसे निमित्त हुआ, दो धर्म के निमित्त कौन है, उपाधि दो। ठीक इसी प्रकार एक घट में दो धर्म आ रहे हैं, पहले अज्ञातता और अभी ज्ञातता, उसका निमित्त क्या है वो ढूंढना पड़ता है ना। हम लोग निमित्त को ढूंढते नहीं है, समस्या इसी में हो जाती है ना, निमित्त को ढूंढना पड़ता है। इसलिए यहां पर निमित्त है ज्ञान और अज्ञान, है ना, ज्ञान और अज्ञान। इसलिए घट में जो पहले धर्म था अज्ञातता, उसका निमित्त कौन हुआ, अज्ञान हो गया ना। और घट में जो ज्ञातता धर्म आया उसका निमित्त क्या है, ज्ञान। लेकिन यहां पर कह रहे ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है, ये इसको यहां पर निरूपण करते हैं षष्ठ श्लोक में। तो ध्यान दीजिए, दृष्टांत बता दिया, लोहांत कुंतवत, बराबर ना, एक बार उच्चारण कर ले, चिदाभासांत धीवृत्तेर ज्ञानम लोहांत कुंतवत जाड्यमज्ञानमेताभ्याम व्याप्तः कुंभो दिधोच्यते। देखो ये बोल दिया लोहांत कुंतवत, कुंत कहते हैं भाला, भाला भाला होता है ना, वैसे हाथ में पकड़ मारते हैं, तो उसके अग्र भाग में क्या रहता है, लोहा, लोहा रहता है। और उससे पहले तो केवल मुट्ठी हुई पकड़ने के लिए, काष्ट हुआ अथवा लोहे का भी होता है। तो अग्र भाग में ये लोहा ना हो, नोक ना हो, तो भेदन क्रिया नहीं होती है, भेदन क्रिया नहीं होगी, है ना। लेकिन उसके भाग में लोहा लगा जाए तो भेदन क्रिया हो जाती है, हो जाती है। ठीक इसी बात यहां पर कह रहे हैं कि बुद्धि तो जड़ है, बुद्धि क्या है, जड़ है। तो बुद्धि में एक वृत्तियां हुई घटाकार पटाकार, घट जैसा आकार होता है ऐसे ही आकार हो जाता है अंतकरण में, उसको कहते हैं वृत्ति, घटाकार वृत्ति। तो घट जड़ होने से घटाकार वृत्ति भी जड़ है, उससे जो है घट का प्रकाश नहीं हो सकता है, है ना भाई। मान लीजिए बत्ती हो और तेल भी हो, मान लो बत्ती भी है और तेल भी है, तो प्रकाश हो जाएगा, नहीं हो सकता है। लेकिन उसमें अग्नि का संयोग हो गया तो प्रकाश हो जाता है, होगी कि नहीं। ठीक इसी प्रकार यहां पर हैं बुद्धि की वृत्ति भी है, मान लो चक्षु भी है, तब भी घट का प्रकाश नहीं हो सकता है। वृत्ति में जब चेतन अभिव्यक्त हो जाएगा है ना, तो प्रकाश हो जाएगा, घट का प्रकाश, है ना। ये बात यहां पर कह रहे हैं, देखो चिदाभास अंत धीवृत्तिर ज्ञानम, ये ज्ञान है। हाँ, लेकिन ज्ञान शब्द का दो अर्थ ध्यान में रखिए, ज्ञान शब्द के दो अर्थ होते, एक मुख्य ज्ञान होता है और एक गौण ज्ञान होता है, समझ में ना। मुख्य ज्ञान क्या है, ब्रह्मरूपी जो ज्ञान है ना, उसको कहते हैं मुख्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान रूप है, इसको विज्ञानम आनंदम ब्रह्म सत्यम ज्ञानम, समझ में है ना, ये ध्यान में रखिएगा। जहां पर शास्त्र आत्मा को ज्ञान रूप कहता है, ब्रह्म को ज्ञान रूप कहता है, वो ज्ञान दूसरा, व्यवहार में जिसको ज्ञान समझते हैं घट ज्ञान पट ज्ञान, ऐसा ज्ञान नहीं है, ध्यान में रखना है ना। तो वो तो स्वरूप ज्ञान, वो क्या है, स्वरूप, उसको कहते हैं ब्रह्म रूपी ज्ञान, ब्रह्म एव ज्ञानम ब्रह्म ज्ञानम, वो स्वरूप ज्ञान हो गया। चाहे वृत्ति हो चाहे वृत्ति न हो, वो तो ज्ञान ज्ञान रहेगा ही, वो स्वरूप ज्ञान हो गया, है ना। मन में व्यापार हो या ना हो, तो आप जड़ रहेंगे कि चेतन रहेंगे, चेतन रहेगी ना, तो वो कैसा चेतन हुआ, स्वरूप चेतन होगा। तो इसको स्वरूप, बिना वृत्ति से भी जिसका भान होता हो वो हो जाएगा स्वरूप चेतन, हो गया कि नहीं। और चेतन के संबंध से जो भासे वो कहां स्वरूप चेतन होगा, नहीं हो सकता है, ये ध्यान में रखिए। तो मुख्य ज्ञान कौन हो गया, ब्रह्म रूपी ज्ञान, किसी के प्रकाश से प्रकाशित न हो लेकिन प्रकाशमान हो, स्वयं प्रकाश जिसको बोलते हैं। तो स्वयं प्रकाश तो ज्ञान ही स्वयं प्रकाश होता है, आगे समझ में। तो अनुभव में ले लो, घटो अस्थि घड़ा है, कहोगे ना, तो किससे सिद्ध होगा, ज्ञान से। अरे भाई ज्ञान यदि न हो तो क्या सिद्ध होगा, घटो अस्थि के लिए भी ज्ञान चाहिए, घटो नास्ति तब भी ज्ञान चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन ज्ञान कैसे सिद्ध होगा, घट का अस्तित्व घट का नास्तित्व ज्ञान से हो रहा है, लेकिन ज्ञान है कि नहीं है इसको सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं, ज्ञान तो स्वयं प्रकाश ही है, ये स्वयं प्रकाश है। तो स्वयं प्रकाश जो ज्ञान है, और आत्मा का स्वरूप ज्ञान होने से आत्मा भी स्वयं प्रकाश हो गया है ना, ये ध्यान दीजिए। तो स्वरूप ज्ञान हो गया, लेकिन घटाकार वृत्ति में जब चेतन का प्रतिफलन होता है, चेतन का प्रतिफलन हो जाता है तो वो जो वृत्ति है ना वो भी चेतन की तरह हो जाती है, सच में ना। इसीलिए चेतन की अभिव्यंजिका होने से वृत्ति को भी घटाकार पटाकार वृत्तियों को भी ज्ञान बोल देते हैं, चिदाभास से युक्त होने के कारण। वो हो गया गौण ज्ञान, वो क्या हो गया गौण ज्ञान, गौण ज्ञान बोलेंगे, यही बात यहाँ पर बोलते हैं। देखो गौण ज्ञान है ना, चिदाभास अंतधीर वृत्ति, अंतकरण के अग्रभाग में मतलब अंतकरण में चेतन का प्रतिबिंब हो गया, मतलब चिदाभास से युक्त हो गई, कौन हो गई वृत्ति, उसको भी ज्ञान बोलते। कौन सा ज्ञान हुआ, गौण ज्ञान हो गया, गौण ज्ञान ऐसा है। तो गौण ज्ञान हो गया, समानता क्या है, जैसे देखो बालक को सिंह बोलते कि नहीं, बालक को क्या बोलते हैं, शेर, ये तो शेर है, शेर शेर है क्या, नहीं है। दोनों में सादृश्य है, पराक्रमत्व का ना, सूर्यत्व, सूर्य, ये सब क्या है, सादृश्य हो गया, समानता हो गई, समानता हो। इसी प्रकार स्वरूप चेतन में और वृत्ति चिदाभास युक्त वृत्ति में क्या समानता हुई, हाँ प्रकाश करना, पकड़ में आए कि नहीं है, प्रकाश करना दोनों में समानता धर्म आ गया ना। तो जो स्वरूप चेतन है वो किसको पहले प्रकाशित कर रहा था, अज्ञात घट को वो प्रकाशित कर दिया वृत्ति होने से पहले हाँ। और ये घड़ा है इसको कौन प्रकाशित किया, चिदाभास अथवा चिदाभास युक्त वृत्ति, ये ले लीजिए, दोनों में समानता हो गई ना, इसलिए प्रकाशकत्व धर्म दोनों में आ गया। इसे पराक्रमत्व सिंह और बालक में है, इसी अगर स्वरूप चेतन और गौण चेतन चिदाभास युक्त वृत्ति चेतन में प्रकाशत्व आ गया धर्म, इसलिए इसको भी ज्ञान बोलते हैं, ये गौण ज्ञान है ना। जहां पर सादृश्य को लेकर कहा जाता है उसको कहते हैं गौण, ये गौणी लक्षणा हुई, सिंह माणव का गौणी लक्षणा होगी है ना। तो देखो चिदाभास अंतधि वृत्तिर ज्ञानम, ये ज्ञान हो गया, कौन सा ज्ञान, मुख्य ज्ञान के गौण ज्ञान, गौण ज्ञान हो गया है ना, ये ध्यान में रखिए। इसी प्रकार वहां पर भी समझा देते हैं और पहले से थोड़ा सा, जैसे अज्ञान का निवर्तक ज्ञान होगा है कि नहीं, अज्ञान का निवर्तक ज्ञान कौन होगा, स्वरूप ज्ञान नहीं होगा है ना। जो माया है, माया का निवर्तक ज्ञान कौन होगा, स्वरूप ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि स्वरूप ज्ञान तो माया का प्रकाशक है। तुम ब्रह्म को जानते हो तो बोलेंगे ब्रह्म अहम न जानामि, अब किसको जान रहे हो, अज्ञान को जान रहे नहीं जान रहे हैं? अज्ञान को जान रहे हैं, तो अज्ञान का प्रकाशित करने वाला कौन हुआ? स्वरूप चेतन हो गया कि नहीं होगा? भले ही मेरा स्वरूप चेतन हो, ऐसा भान हो या ना हो, लेकिन स्वरूप तो स्वरूप रहेगा। स्वरूप तो स्वरूप रहेगा, स्वरूप कभी जाएगा नहीं। स्वरूप कभी, देखो बड़ा विलक्षण है, हम ही प्रकाशित करते हैं, है ना? लेकिन जब अंतकरण में तादात्म्य कर लेते हैं तो हम जीव बन जाते हैं, आए समझ में? लेकिन आप जिस समय अपने को जीव बोल रहे हैं उसमें भी आप साक्षी है। साक्षी कभी जाएगा नहीं, साक्षीपना कभी नहीं जाएगी, साक्षीपना तो रहेगी ही रहेगी, ये ध्यान देने की बात है। तो ये हम कह रहे थे, स्वरूप चेतन माया का बाधक नहीं है। माया का क्या है? साधक, मतलब प्रकाशक, सत्ता देने वाला, प्रकाश देने वाला है। इसको भगवान ने क्या बोला कि माया देक्षण प्रकृति ही सुयते स चराचरम। माया का मैं क्या हूं? अध्यक्ष, मतलब अरे भी अध्यक्ष नहीं बनाते हैं मंच पर, नहीं बनाते अध्यक्ष। अध्यक्ष कुछ करता नहीं है, वो देखता रहता है कौन क्या बोल रहा है, उसको बस देखता है, कुछ बोलेगा नहीं, अंत में माइक धरा देते हैं। अध्यक्ष का भाषण पहले होता है कि अंत में होता है? लेकिन यही अध्यक्ष होता है, साक्षी को कहते हैं अध्यक्ष, कुछ करे ना लेकिन सब देखता रहे, हो गया ना? ये कूटस्थ में, अरे इसमें थोड़ा अंतर हो गया। कूटस्थत्ते सती है ना, साक्षात दृष्टित्वम, ये होता है साक्षी। कूटस्थ हो और प्रकाशित करे, वो होता है साक्षी। है दोनों एक ही है, है ना? शब्द केवल अंतर अंतर है। सत्ता को लेकर कूटस्थ हो गया, अचेतन को लेकर के साक्षी हो गया, है ना? ये ध्यान में रखना। तो लेकिन वो स्वरूप चेतन जब ब्रह्माकार वृत्ति में अभिव्यक्त हो जाएगा तब तो अज्ञान का बाधक हो जाएगा, हो गया ना? सिंह उसको कहते हैं ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्मण ज्ञानम कहेंगे तो अज्ञान निवर्तक ज्ञान हो जाएगा, अब ब्रह्म एवं ज्ञानम कहेंगे तो स्वरूप ज्ञान हो गया, दोनों में अंतर हो गया। तो ध्यान दीजिए, ये तो ज्ञान को बता दिया, गौण ज्ञान को। चिदाभास से युक्त तो जो वृत्ति है उसको कहते हैं गौण ज्ञान, है ना? और अज्ञान कौन है? कहते जाढ़्यम अज्ञानम। अज्ञान क्या होता है? जड़। अज्ञान कहीं भी चेतन नहीं हो सकता, वो जड़ी रहेगा, जड़ी रहेगा। तो फिर क्या हुआ इससे? एताभ्याम व्याप्त कुंभो दुधच्चते। ये दोनों से जो घड़ा है ना व्याप्त होता है, दोनों से क्या होता है? घड़ा व्याप्त होता है। ले पीछे बताया था, बुद्धि तस्थ चिदाभासौ द्वावपि व्याप्नुतो घटम तत्राधिया ज्ञानम न सेत आभासेन घटस्पुरेत। पिछाया, दोनों से व्याप्त होता, दोनों का संबंध बनता है। पहले बताया बुद्धि तस्थ चिदाभास है ना, घटाकार वृत्ति का भी संबंध हुआ चक्षु के द्वारा, किसके साथ? घट के साथ, हो गया, हो गया। अब वृत्ति में जब चिदाभास हो गया, प्रतिफलन चेतन हो गया, उसका भी संबंध होगा घड़े के साथ। तत्रा ज्ञानम धिया नश्यत, है ना? पहले कुछ गलती तो नहीं बोला? तत्रा ज्ञानम धिया नश्यत, धी मतलब कौन हो गया? वृत्ति। घटाकार वृत्ति के द्वारा अज्ञान का निवर्तन होगा, घट का जो अज्ञान हो रहा था ना, है ना? वो घटाकार वृत्ति के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होगी। और आवास है ना घट स्फुरित, चिदावास के द्वारा घट का स्फुरण होगा, एक घड़ा है आज प्रकट में। इसलिए वहां पर जैसे दोनों का संबंध हो रहा था घट के साथ, किस किस का हुआ? वृत्ति का भी हुआ और चिदावास की हुआ, समझ में? ठीक, इसी प्रकार यहां पर कहते हैं घड़े के साथ दोनों का संबंध हो रहा है, ज्ञान का भी हो रहा है अज्ञान का भी हो रहा है। पहले किसका हो रहा था? अज्ञान का, है ना, अज्ञान का, है ना। तो अज्ञान का संबंध किसके साथ हो रहा था? घड़े का। और अज्ञान का विषय घड़ा हो गया। अब प्रकाशक कौन हो गया? कुटस्थ। किसका हुआ? हाँ, है ना, अज्ञान का हुआ और घट का भी हुआ, मतलब अज्ञान विशिष्ट घट का। अज्ञान का भी भान हो रहा है और घड़े का भी हो रहा है, तो अज्ञान का नहीं ना हो रहा है, घड़े का भी हो रहा है, ऐसे समझ में न। और बात में चिदाभास का हो गया, हुई कि नहीं? घटाकार वृत्ति हुई तो वृत्ति में प्रतिफल चेतन हो गया, तो चिदाभास युक्त वृत्ति का भी संबंध हुआ घड़े के साथ, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो कैसा अनुभव होगा? ये घड़ा है, ये घट का प्रकाश हो गया। ये घट का प्रकाश किससे हुआ? चिदाभास से हुआ, है ना। लेकिन उसी समय ही, टाइम नहीं लगता है, उसी समय ही ज्ञान का भान हो जाएगा, नहीं होगा? उसी समय घट का ज्ञान भी प्रकाश हो जाएगा। संशय होता है क्या? घड़े का ज्ञान मुझे हुआ कि नहीं हुआ, थोड़ा सोचते हैं, ये नहीं बोला। ये साक्षीवास है, इसका नाम क्या है? साक्षी। कौन हो गया साक्षीवास? घड़े का ज्ञान, ये साक्षीवास हो गया। जैसे सुख दुख, सुख हुआ आपको, संशय होता है कि मुझे सुख हुआ कि नहीं हुआ? तो साक्षी भाषा में कोई संशय नहीं होता है, ना संशय है ना भ्रांत, कुछ भी नहीं है, साथ ही साथ होगा। हाँ, ध्यान में रखो, घड़े का प्रकाश जिस समय हो रहा है, घट का ज्ञान भी उस समय प्रकाश हो जाए, समय नहीं लगता है, क्योंकि उसके लिए कोई वृत्ति की आवश्यकता नहीं ना है। घाट के लिए वृत्ति की आवश्यकता है, घट ज्ञान के लिए कोई वृत्ति की आवश्यकता नहीं है, आई समझ में ना? ये है, किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। घट के लिए प्रमाण की आवश्यकता है, कौन सा प्रमाण की? चक्षु प्रमाण की आवश्यकता है, आई समझ में ना? लेकिन घट का ज्ञान के लिए कौन सा प्रमाण की आवश्यकता है? हाँ, साक्षी के लिए के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वो तो प्रमाण को ही प्रकाशित कर देगा। हाँ, प्रमाता है ना, प्रमाण तीन हो गए ना, हाँ त्रिपुटी हो गई, ज्ञाता ज्ञान गया, तीनों का प्रकाश हो जाएगा किससे? साक्षी चेतन से हो जाएगा। हाँ, तो थोड़ी सी टीका देख लो। चिदाभास अंतधिवृत्ति ही, ये तो श्लोक में है ही। आगे चिदाभास चित प्रतिबिंब, चिदाभास किसका नाम है? चेतन का प्रतिबिंब कहते हैं चिदाभास। सो अंते, वही चिदाभास जो प्रतिबिंब है, अंते पूरो भागे जस्या, जिसके अग्र भाग में हो। किसके अग्र भाग में हुए? वृत्ति, मतलब वृत्ति में प्रतिफलित हो जाना भाई, ये तात्पर्य। नहीं तो वृत्ति का आगे और पीछे क्या होगा, है ना? भाले का तो आगे पीछे कुछ है, वृत्ति में क्या आगे भी होगा, ये तात्पर्य यहाँ पर। साधि वृत्ति, इसको कहते हैं ज्ञानम। कौन सा ज्ञान हुआ? ये गौण ज्ञान है ना, इसलिए आगे लिखते हैं भगवान भाष्यकार भी कि कहीं ये लिखा है कि वृत्ति ज्ञान को भी ज्ञान बोलते हैं। देखो, बोधेद्दा बुद्धि ही इति आचार्य अभिधानात। आचार्य कौन? भगवान शंकराचार्य, उसी को यहाँ पर आचार्य बोल रहे हैं। तो भगवान शंकराचार्य ने भी इसको ज्ञान शब्द से कहा। किसको? ध्यान में रखिए, बोधेद्दा बुद्धि ही, बोध हो गया स्वरूप चेतन, समझ में ना, बोध हो गया स्वरूप चेतन, उससे है उसका प्रतिफलन हुआ कौन? वृत्ति, घटाकार पटाकार वृत्ति हो गया कि नहीं? इसलिए बोध हो गया स्वरूप चेतन, स्वरूप चेतन से जो प्रतिफलित हुआ है ना, कहां पर? अंत तक घटाकार पटाकार वृत्ति, उसको भी ज्ञान शब्द कहा। इसलिए बोधेद्धा बुद्धि, ये ज्ञान हो गया, है ना। अतः स्वरूप चेतन को अभिव्यक्त करने वाली वृत्ति, बुद्धि से हमारे वृत्ति को लेनी है, बोधेद्धा वृत्ति, बुद्धि का अर्थ वृत्ति, कटागर पटागर वृत्ति धर्मया। अथवा ऐसा भी कहते हैं बुद्धि इद्ध बोध, बुद्धि इद्ध बोध मतलब बुद्धि में प्रतिफलित जो चेतन हुआ, इसलिए बोध से क्या लेंगे चेतन को, बोध शब्द का अर्थ चेतन हो गया। हाँ, मतलब चेतन से युक्त जो वृत्ति हुई उसका नाम हो गया ज्ञान, हो गया ना भाई। अथवा वृत्ति में जो इद्ध बोध, उल्टा भी बोलते हैं ना, बुद्धि इद्ध बोध, इसका भी ज्ञान है, दोनों हो गया। इति आचार्य अभिधाना, भगवान शंकराचार्य ने इसको ज्ञान शब्द से कहा है, अभिधान कथनात्। अच्छा, इसमें दृष्टांत बताया, तत्र दृष्टांत लोहांत कुंतवत, ये दृष्टांत हो गया, जिसके अग्रभाग में लोहा हो वो कौन हो गया भाला, इसको कहते हैं कुंत संस्कृत में, भाले का नाम होता है कुंत। अच्छा, तो ये तो ज्ञान शब्द को बता दिया, तो ज्ञान शब्द का अर्थ क्या हुआ, चेतन को अभिव्यक्त करने वाली वृत्ति अथवा चिदाभास युक्त वृत्ति, ये समझ लो, चिदाभास युक्त वृत्ति का नाम हो गया ज्ञान। कौन सा ज्ञान, गौण ज्ञान, गौण ज्ञान हो गया। और अज्ञान क्या है, जाड्यम स्वतः स्फूर्ति रहितत्वम अज्ञानम इति उच्यते, अज्ञान को बोल दिया जड़ शब्द से, और जड़ किसको बोलेंगे, स्वतः स्फूर्ति रहितत्वम, जिसमें स्वतः स्फुरण ना हो सके, जिसका स्वतः स्फुरण ना हो सके उसका नाम हो गया जड़। ऐसे कौन होंगे, कौन होंगे, माया तो है ही है, माया का कार्य जितने भी है सब जड़ी है, सब क्या है जड़ी है। किसी को बोल दो देखो, अरे तुम जड़ हो, क्या हो, जड़ हो, जड़, तो जड़ किसका धर्म हुआ, जड़ था बुद्धि का धर्म होता है। अभी मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ ये बोलते ना, लगता है कि मैं जड़ हूँ बिल्कुल, तो आप जान रहे हो कि नहीं, मैं जड़ हूँ इसको भी जान रहे हो, तो आप जड़ कहाँ हुए। आत्मा कभी जड़ नहीं हो सकता है, बुद्धि का धर्म जड़ता है, उसमें अहम बुद्धि के कारण मैं जड़ हूँ, अथवा सामने वाला ये बोलता है कि तुम जड़ो, है ना, इसलिए जड़ता मूर्खता ये बुद्धि का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। तो ले लिए स्वतः स्फूर्ति रहित, तो स्वतः स्फुरण दो स्फुरण है, एक स्वतः स्फुरण है एक परतः स्फुरण है, बराबर है कि नहीं, क्या एक स्वतः स्फुरण हो गया और एक परत, तो स्वतः स्फुरण किसका होगा, आत्मा का ही होगा, बस हो गया कि नहीं। इसलिए मैं हूं कि नहीं हूं, हाँ, ऐसा कभी संशय नहीं होता, मैं नहीं हूं ऐसी भ्रांति भी कभी नहीं होती, क्यों नहीं होती है, क्योंकि आत्मा तो ज्ञान रूप है और ज्ञान रूप होने के कारण वो स्वयं प्रकाश है, हो गया कि नहीं। और इसका संबंध जहां पर हो जाएगा वो भी चेतन की तरह मालूम पड़ता है, चेतन की तरह है ना, तो ऐसा होता है। तो कहां पर मालूम पड़ता है, जहां पर चेतन का प्रतिफलन हो, कहां पर होगा, बुद्धि में होता है। यद्यपि ये घटपटादि भी पांच भौतिक है, उसी प्रकार बुद्धि भी पांच भौतिक है कि नहीं। बुद्धि क्या चीज है, बुद्धि क्या है, बुद्धि किसको बोलते हैं, हा भाई, अपंचकृत पंच महाभूत के सत्य गुण मिलितांश से अंत्यकरण बुद्धि हो गई, तो ऐसा घटपटादि है क्या, नहीं है। घटपटादि दोनों में विशेषता है, यद्यपि दोनों पांच भौतिक है, जैसे व्यवहार में देखो घट भी हो गया पांच भौतिक, इसलिए घट में प्रकाश तो होता नहीं है, सूर्य का प्रतिमा पड़ेगा घट में, नहीं पड़ता है, लेकिन कांच है, कांच शीशा तो शीशा भी पांचा भौतिक है कि नहीं है? रेती से सब मिलाकर बनाते हैं। यद्यपि शीशा भी पांचा भौतिक है, घट भी पांचा भौतिक है, लेकिन घट के प्रति इसके विशेषता क्या हुई? प्रतिमा को धारण करना स्वच्छ हो गया। इसी प्रकार यहां पर समझ लो, घड़ा और अपनी बुद्धि दोनों में ये विलक्षण हो गया। घड़ा उसमें भी चेतन तो है, सामान्य हो, चेताभास वहां पर नहीं हो, इसलिए घर को जड़ बोलते हैं। इसी प्रकार हमारी बुद्धि को जड़ नहीं बोलते हैं। मैं चेतन हूं बोलता है कि नहीं, छाती ठोक करके? हाँ, तो शरीर को चेतन बोल रहा है कि जड़ बोल रहा है? जिस समय बोलता है कि अहम मनुष्य है, ये काम किसने किया, तो ऐसा बोलता है कि नहीं? मैंने किया। तो ये जो बोल रहा है ये शरीर को भी चेतन नहीं समझ रहा है, शरीर को भी चेतन समझ रहा है। तो शरीर को चेतन कब कहोगे या क्यों कहेंगे? जब शरीर में चेतन का प्रतिबिंब होगा, चिदाभास युक्त हो गया, ये हो गया चेतन। कौन सा चेतन है? गौण चेतन हो गया, दोनों में अंतर हो गया। इसलिए भगवान ने क्या बोला? ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुना तिष्ठति, कहा कि नहीं कहा? इसमें चेतन की अभिव्यक्ति होती है। तो ले लीजिए, जाड्यम सतस्फूर्ति रहितत्वम अज्ञानम इति उच्यते एताभ्याम पर्यायेण व्याप्तः। क्या लिखा है आपकी पुस्तक में? एताभ्याम लिखा है ना? हाँ ठीक है, इसमें तो लिखा है ना, इसलिए बोल एताभ्याम नहीं एताभ्याम। हाँ, दोनों से, दोनों कौन कौन हो गए? अज्ञान और ज्ञान। हाँ, इसलिए कहते हैं पर्यायेण व्याप्त, पर्याय से संबंध होगा ना अज्ञान और ज्ञान का। पहले अज्ञान का संबंध हो रहा है, था घड़े के साथ, इसलिए घट को मैं नहीं जानता हूं, अज्ञान का संबंध है। और बाद में जब चिदाभास हुआ तो ये घड़ा है, अज्ञान का संबंध हो गया। एक साथ होगा? नहीं होगा। अज्ञान और ज्ञान एक साथ नहीं रहेंगे ना, अंधकार और प्रकाश नहीं हो सकते, लेकिन पर्याय से रहेंगे। पहले अंधकार थे आने से पहले कमरे में, और प्रकाश आ गया, हो गया कि नहीं? ऐसा हो जाता है। इसी प्रकार पहले कर्म हो रहा था, उसके बाद ज्ञान होगा, नहीं होगा? लेकिन दोनों का समुच्चय एक साथ होगा? नहीं होगा। इसलिए ज्ञान कर्म समुच्चय युगपद नहीं हो सकता, क्रम से तो हो जाएगा। पहले कर्म का अधिकारी था और अभी किसका अधिकारी हो गया? ज्ञान का हो गया, दोनों में कोई विरोध नहीं है। ठीक, इस बार यहां पर पहले अज्ञान का संबंध था घट के साथ, अभी ज्ञान का संबंध हो गया। कौन से ज्ञान के बाद बोल रहे हैं? गौण ज्ञान, अज्ञान निवर्तक ज्ञान की बात कह रहे, सामान्य चेतन ज्ञान की बात नहीं कह रहे। इसलिए बोल दिया पर्यायण है ना, पर्याय क्यों हो गया? दोनों में विरोध है ना, अज्ञान और निवर्तक ज्ञान में विरोध हो गया, इसलिए क्रम से होगा, एक साथ नहीं होगा। एताभ्याम पर्यायेण व्याप्तः सर्वतः संबद्ध है ना, सब जगह में ऐसा संबंध होता है, संबद्ध संबंध से युक्त, संबद्ध का अर्थ क्या? संबंध से युक्त, संबंध वाला। हाँ, इस शब्द को ध्यान रखना, संबद्ध का अर्थ क्या है? संबंध वाला को संबद्ध बोलते हैं, है ना? संबद्ध कौन हो गया? कुंभ। द्विधा उच्यते, इसलिए दो प्रकार धर्म आ गया कुंभ में, इसलिए घट दो प्रकार का हो गया। पहले अज्ञात घट था, अब क्या हो गया? ज्ञान घट हो गया, ऐसा होता है ना? पहले मान लीजिए किसी प्रदेश का हो, जैसे उड़िया बाबा नहीं बोलते हैं, है ना? तो पहले भी उड़िया थे कि नहीं थे? वो थे ना महात्मा बनने से पहले, और महात्मा बनने के बाद भी क्या बोलते हैं उसको, है ना? बोलते हैं, लेकिन दोनों में अलग है कि नहीं? दोनों में अलग हो गया ना, है ना? ऐसा है, तो एक ही पदार्थ है कुंभ। द्विधा उच्यते ज्ञात इति अज्ञात, ये तो लिख दिया। घट दो प्रकार क्या हुआ? पहले अज्ञात था, उसके बाद ज्ञात हो गया, ज्ञात हो गया इत्यर्थ। अच्छा, आगे देखो सप्तम श्लोक के ऊपर थोड़ा सा विचार करते हैं। एक शंका पक्षी कहता है, ननो अज्ञातस्य कुंभस्य अज्ञान व्याप्तत्वात् भवतु ब्रह्म अवभाष्यत्तम। पहले शंका को समझ लो। शंका पक्ष बोल रहा है कि कुंभ कैसा था? अज्ञात। घड़ा कैसा था? अज्ञात। क्यों हुआ अज्ञात? अज्ञान व्याप्तत्वात्, अज्ञान का संबंध हो रहा है, मतलब अज्ञान का विषय हो रहा था घट, इसलिए घट कैसा था? अज्ञात था। हो गया ना? इसलिए ब्रह्म अवभाष्यत्तम भवतु, ऐसा न है, इसलिए ब्रह्म के द्वारा अवभाष्य, अवभाष्य मतलब प्रकाश्य, किससे हुआ? ब्रह्म से, कुटस्थ चेतन से, ब्रह्म से हमारे कुटस्थ चेतन, इसलिए ब्रह्मणा अवभाष्य अवभाष्यत्तम ब्रह्म के द्वारा प्रकाशित हो जावे। कौन सा घट? अज्ञात घट। होने दो, पूर्व पक्ष होने दो, लेकिन ज्ञान व्याप्तस्य तु ज्ञातस्य कुंभस्य कुतो ब्रह्म चैतन्य अवभाष्यत्तम। लेकिन जब चिदाभास होने के बाद है वो घट कैसा हो गया? ज्ञात हो गया। चिदाभास ने एक धर्म को उत्पन्न किया, किसमें उत्पन्न किया? घड़े में। कौन सा धर्म? ज्ञातता अथवा ज्ञातत्व, एक ही अर्थ। ज्ञातता एक धर्म को उत्पन्न किया, ओके कि नहीं? तो वहां पहले तो भाई भोजन बना रहा था तो पाचक था वो, और पुस्तक पढ़ लिया तो जो पठन क्रिया है ना, पठन किया एक धर्म को उत्पन्न किया। कौन सा धर्म? पाठकत्व। पाठकत्व उसका नाम हो गया। तो पाठकत्व धर्म को किसने उत्पन्न किया है जी? क्रिया भाई, पठन क्रिया ने उत्पन्न किया, ये समझ लो। ठीक इसी प्रकार जब चिदाभास हुआ वृत्ति में, तो चिदाभास युक्त वृत्ति ने किसको उत्पन्न किया? ज्ञातता धर्म को उत्पन्न किया घड़े में। ये तो बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। इसलिए ज्ञान व्याप्तस्य ज्ञातस्य कुंभस्य, ज्ञान का संबंध किसके साथ हुआ? ज्ञात कुंभ के साथ हो गया, है ना? कुतो ब्रह्म चैतन्य अवश्य, हाँ, उसको भी ब्रह्म चैतन्य क्यों प्रकाशित करेगा? किसको? ज्ञात घट को। मतलब चिदाभासी कर दे, ये तात्पर्य है। चिदाभासी घट को प्रकाशित करे और ज्ञात घट को भी वही चिदाभास प्रकाशित करे, कुटस्थ चेतन अलग मानने की क्या जरूरत है? ये पूर्व पक्ष है। तब इसका उत्तर देते हैं, नहीं कर सकता है। चिदाभास कब तक रहेगा भाई? चिदाभास कब तक रहेगा? जब तक वृत्ति हो तब तक चिदाभास रहेगा ना। अरे भाई, जब तक तुम भोजन बना रहे हो आपका नाम पाचक हो गया, है कि नहीं? और जब पुस्तक पढ़ोगे तब भी पाचक थोड़ी हो गए, है ना? सब छोड़ दिया था, पाचक कहाँ हुए? नहीं रहे। ठीक है, सिवाय घटाकार वृत्ति जब तक है तब तक चिदाभास है, हो गया ना? आ चिदा जब अंतकरण वृत्ति ना हो तो काय को चिदाभास रहे? किसमें रहेगा चिदाभास? कोई हो तो प्रतिफलन होगा, वृत्ति रही नहीं तो प्रतिफलन किसमें होगा? आए समझ में ना? इसलिए घटाकार वृत्ति ना होने से चिदाभास नहीं हुआ, और चिदाभास ना होने से जो है घट का भान कैसे होगा? किस घट का भान? ज्ञात घट का भान। पहले तो ये घड़ा है, ये तो हो गया चिदाभास से, उसके बाद जो भान हो रहा है घट को मैं जानता हूं, ये चिदाभास से नहीं होगा, ये तो कुटस्थ चेतन से होगा। इसलिए कुटस्थ चेतन चिदाभास से भिन्न है, वो है लक्षार्थ, है ना? ज्ञान कराना लक्षार्थ का। इसी बात को टीकाकार पहले कहने जा रहे हैं। देखो, अज्ञानस्य अज्ञातता जनन मात्रेण इव, इव ऐसा विच्छेद करना है ना? अज्ञातता जनन मात्रेण इव, पहले अज्ञान था, अज्ञान ने किसको उत्पन्न किया? अज्ञातता धर्म को उत्पन्न किया, हो गया ना भैया? तो क्या उसका काम हो गया? किसका काम हो गया? अज्ञान का। अज्ञान ने घट में एक अज्ञातता धर्म को उत्पन्न करके वो चरितार्थ हो गया, काम खत्म हो गया, हो गया कि नहीं? अज्ञान ने किया जी, हाँ, उसमें कहाँ चिदावास हो गया? कोई वृत्ति नहीं है तो चिदावास कहाँ से होगा? हाँ, चिदावास रहित अज्ञान ने वो घट में एक अज्ञाता धर्म को उत्पन्न कर दिया और उसका काम हो गया, निपट गया है ना। ठीक इसी प्रकार से आगे ले लो, ज्ञानस्यापि ज्ञातता जनन मात्रेण उपक्षिणत्वात्। इसी प्रकार ज्ञान भी, कौन सा ज्ञान? चिदाभास से युक्त ज्ञान, चिदाभास से युक्त वृत्ति रूपी ज्ञान है ना, वो ज्ञान शब्द से लेना है। वो भी क्या करेगा? ज्ञातता जनना मात्रेण, ज्ञातता धर्म को उत्पन्न करने से ही, मतलब ही करने से ही उपक्षिणत्व, वो तो उपक्षण हो गया, इसका काम खत्म हो गया, चरितार्थ हो गया, नष्ट हो गया यार क्या, क्योंकि वृत्ति तो क्षणिक हो गई। हाँ ये समझ लो, अज्ञान भी गया, अज्ञान भी गया, गए, लेकिन भान हो रहा है कि नहीं? अभी भान तो हो रहा है, किसका भान हो रहा है? कैसा घड़े का? हाँ ज्ञात घड़े का, मतलब जाना हुआ घड़े का, ये समझ लो। जाना हुआ घड़े का भान हो रहा है, वो किससे होगा? चिदावास से तो नहीं हो सकता है, इसलिए कूटस्थ चेतन तो है ही। ये बात लिखते हैं देखो, अज्ञात कुंभवत ज्ञातस्य अपि ब्रह्म अभास्यत्वं भवति। जैसे अज्ञात घड़ा कूटस्थ चेतन से प्रकाशित हुआ, ठीक इसी प्रकार से ज्ञातस्यापि ज्ञात घड़ा भी किससे होगा? ब्रह्म अभास्यत्व। ब्रह्म कौन हो गए? विशेष नहीं यहाँ पर ब्रह्म से, कूटस चेतन, साक्षी चेतन, कूटस चेतन से वो होगा है ना, इसलिए उसमें कोई विकार नहीं है, चाहे घड़ा ज्ञात हो चाहे घड़ा अज्ञात हो, सबको प्रकाशित कर देगा है ना, ऐसा है। इसी बात को सप्तम श्लोक में कहने जा रहे हैं। देखो, अज्ञातो ब्रह्मणा भाष्यो ज्ञातः कुंभस्तथान किम्, ज्ञातः कुंभस्तथान किम्, ज्ञातत्व जननेनैव चिदाभास परीक्षयः। बोलते हैं ब्रह्मणा भाष्यः अज्ञातः। ये देखो, अज्ञातः कौन हो गया? घट है ना, ऐसा अन्न कर, कुंभ है ना, आगे कुंभ को इधर भी ले लीजिए, अज्ञात कुंभः ब्रह्मणा भाष्यः, एक वाक्य हो गया है ना, अज्ञात घट ब्रह्म से प्रकाशित हुआ होता है, कूटस्थ चेतन ब्रह्म से यदि हुआ तो ज्ञात कुंभ तथा न किम, ज्ञात कुंभ भी उस ब्रह्म से प्रकाशित क्यों नहीं होगा? अर्थात हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा, ऐसा इसलिए दो घट ही हो गया, अज्ञात घट भी कूटस्थ ब्रह्म से, ज्ञात घट भी कूटस्थ ब्रह्म से, क्यों हो गया भाई, हेतु क्या है? अगर लिखते हैं, ज्ञातत्व जनने एव चिदाभासक परीक्षा, ये हो गया हेतु, ऐसा जो मैंने कूटस्थ ब्रह्म से ही होगा ज्ञात घट का प्रकाश, चिदाभास से नहीं होगा, इसका हेतु को बताने के लिए ये उत्तरार्ध हो गया, ध्यान में रखो, ज्ञातत्व जनन एव ज्ञातता धर्म को उत्पन्न करने से ही चिदावास परीक्ष, चिदावास तो नष्ट हो गया, चिदावास का तो काम हो गया, फिर भी भान तो होता है, ये अर्थापत्ति प्रमाण है, हो गया कि नहीं है ना, कि घट का भान होने के बाद जो ज्ञात घट का भान हो रहा है, ये यदि किसी कुटस चेतन यदि न हो तो भान नहीं होना चाहिए, लेकिन भान तो हो रहा है ज्ञात घट, कैसे? घटम अहम जानामि है ना, इसलिए कूटस्थ ब्रह्म चिदाभास से भिन्न है। वो नहीं, आभास नहीं होता, नहीं। हाँ हाँ, और तत्पत्ति कैसे हो गया बता रहे हैं। हाँ हाँ, कल बताएंगे फिर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।